تشریف فرما. جملہ علماء احترام، علماء کرام، جملہ طالبان علوم نبویہ، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین. آئیے بلا تاخیر ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر محبوب رب اکبر، ہم غریبوں کے یاور، شافع روز محشر، ساقی حوض کوثر، شافع روز محشر، یعنی صبح کائنات کے شمس الدہا، شام کائنات کے بدر الدجا، حضور محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، میرے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے، بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقدر بہت عروج پہ ہے کہ حضرت نے بخود اپنی زبان فیض ترجمان سے فرمایا کہ ان کو موقع دیا جائے. یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ ایسے مرکزی دارالعلوم میں بڑے بڑے لوگوں کو بہت مشکل سے موقع مل پاتا ہے. مجھ جیسا حقیر و فقیر کیا بساط رکھتا ہے. یہ حضرت کی کرم نوازی ہے اور بزرگوں کا فیضان ہے کہ مجھے آپ کے درمیان کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے. حضرات محترم، حضرت نے فرمایا کہ جیسا کہ یہ علماء، یہ احترام علماء اہل سنت کانفرنس ہے اور احترام نبوت کانفرنس اور جشن دستار عالمیت کانفرنس. یہ حضرات، میں آپ کے ذہن و فکر کو تھوڑی دیر کے لیے حاضر کر کے اپنی گفتگو آپ کے ذہن و فکر میں اتاروں. آپ سوچئے، یہ علماء ربانین جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، ظاہری طور پر اگر ایک دنیا دار سے ان کا موازنہ کیا جائے تو دنیا دار یہ کہہ دے گا دنیا کے اعتبار سے کہ دنیاوی معاملات میں یہ ہمارے برابر نہیں ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ علماء جنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا لباس، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ان کے کھانے پینے کا انداز، جو کچھ بھی ہے سب کچھ شریعت کے دائرے میں ہے. الحمدللہ یہی علماء ہیں جو اس دنیا دار کو بھی دین کی راہ بتاتے ہیں، یہی علماء ہیں جو وقت کے ساہوکار کو بھی دین کی باتیں سمجھاتے ہیں، یہی علماء ہیں جو آپ کو احترام نبوت سے جوڑتے ہیں، یہی علماء ہے جو نبی کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کی تنخواہ 2000 ہے کہ 5000 ہے کہ 10000 ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. دین کا مشن جو آج پوری دنیا میں چراغ کی طرح روشن ہے، سورج اور چاند کی طرح چمک رہا ہے، یہ علماء کی دین ہے. یہ علماء ہے جہاں اندھیرا ہے وہاں علم دین سے، نبی کے عطا کردہ علوم سے اس علاقے کو روشن کر رہے ہیں، اس جگہ کو روشن کر رہے ہیں. اور وہ دل جو تاریک ہیں، تبلیغ اسلام کے ذریعے سے، اپنی تبلیغ، اسلامی تبلیغ کے ذریعے سے، اپنی تحریک کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے اس دل کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ علماء کی ذات ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ان علماء کو دنیا دار سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. اگر سمجھنا ہے تو اسے دین کی روشنی کے سائے تلے بیٹھنا ہوگا. جب وہ اس کے سائے تلے بیٹھے گا تب اسے ان علماء کی حقیقت کا سے آشنائی حاصل ہوگی، تب وہ سمجھ پائے گا کہ علماء حقیقت میں اپنے اندر کتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں، इनकी क्वालिटी क्या है, इनके अंदर ताकत क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनकी बुलंदी क्या है, अगर समझना है तो सरकारे मुस्तफा अलैहि तहतोसना की एक हदीस जिसका मफहूम मैं आपके जहन में उतारूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारत फरमाया, कल मैदान महशर में उलमा के और शहदा के का मुआजना होगा, शहदा के खून को इकट्ठा किया जाएगा, उलमा की स्याही को इकट्ठा किया जाएगा, दोनों को इकट्ठा करके जब उन्हें तौला जाएगा तो ये उलमा की रोशनाई उनकी खून पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी। सब अहले महशर देखकर ये पुकारेंगे, ए मेरे मौला, इन्होंने तो जान अपनी दी थी तेरी राह में, इन्होंने तो अपनी गर्दनें गड़ाई थी अपनी राह में, इन्होंने तो अपने खून के फव्वारे बहाए थे, आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी रोशनाई तेरे इन शहदा के खून से भी ज्यादा भारी है। तो रब्बे अकबर पुकारेगा, रब्बे कदीर की रहमत की आवाज उठेगी, ए मेरे बंदो सुनो, ये कोई और नहीं है जिन्होंने, ये कोई और नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इन शहीदों को शहादत का मर्तबा बताया। ये कोई और नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इन शहीदों को शहादत का फलसफा समझाया था, इन्हें मर्तबा समझाया था। चलते चलते मैं आखिरी बात अर्ज करूं, मेरे पास वक्त बहुत कम, हजरत ने 10 मिनट की कैद लगाई है, मेरी कोशिश ये है कि 1-2 मिनट और ज्यादा मैं बचा दूं ताकि और किसी के काम आ जाए। हजरत देखिए, आओ जरा देखो, बात आई है मैदान महशर की, एक आखिरी बात आपके जहन में उतारूं। आलिम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वक्त का मुहक्किक हो या मुदक्किक हो, चाहे मुहद्दिस हो या मुफक्किर हो, चाहे वो कोई भी आलिम हो, चाहे आपकी मस्जिद में अज़ान देने वाला आलिम हो, चाहे आपकी मस्जिद में इमामत करने वाला आलिम हो, चाहे आपके मदरसे में बच्चों को अलिफ बे ते बगदादी कायदा पढ़ाने वाला आलिम हो, या दारुल उलूम में बैठकर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराय बुलंद करने वाला आलिम हो, कोई भी आलिम हो, वो लाइक तासीम है, बाइस तकरीम है, इसलिए क्योंकि वो आलिम दीन तुम्हारे बच्चों के दिलों में दीन की मोहब्बत की शमा जला रहा है, तुम्हारे घरों में दीन की मोहब्बत की रोशनी फैला रहा है। हजरात आओ जरा जहन को हाजिर फरमाइएगा, ये उलमा दुनिया में भी आपको फायदा देते हैं और आखिरत में भी इंशाल्लाह ये फायदा देंगे। आओ बात आई है तो सुनते हुए चलो, एक रवायत मैंने देखी है जिस रवायत में बहुत सरीह तौर पर यह लिखा गया है कि कल मैदान महशर में एक शख्स को फरिश्ते ले जाकर जन्नत जहन्नम की तरफ खींच कर ले जा रहे होंगे, ऐसे आलम में उसका हिसाब किताब हो चुका होगा, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, फरिश्ते जब उसको 2 कदम लेकर चलेंगे वो रब की रहमत की तरफ पलट कर देखेगा, रब की रहमत पुकारेगी, ए मेरे फरिश्तों ठहरो, जरा पता तो करो ये क्यों मेरी तरफ देखना चाह रहा, क्यों मेरी तरफ देख रहा है, इसके देखने की वजह क्या है। बंदे से पूछा जाएगा, बंदा कहेगा, ए मेरे मौला, अभी भी तेरी रहमत से मैं उम्मीदवार हूं, अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि शायद तेरी रहमत मुझे माफ कर दे। रब्बे कदीर फरमाएगा, ए फरिश्तों जरा इससे पूछो, ये जिस आबादी में रहता था उस आबादी में कोई आलिम दीन था कि नहीं, था कि नहीं, कोई आलिम दीन था कि नहीं। फरिश्ते उससे सवाल करेंगे, ए बंदे खुदा, ये बता, जिस आबादी में तू रहता था क्या कोई आलिम दीन था, क्या कोई नाइबे मुस्तफा था। वो बंदा गौर व फिक्र करेगा, कहेगा, ए मेरे मौला, मेरी उस आबादी में तो जहालत की दूर दूर तक, जहालत का दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई इस लायक नहीं था जिसे आलिम कहा जाए। फिर उसको फरिश्ते खींचेंगे, 2 कदम लेकर चलेंगे, रब की रहमत फिर आवाज देगी, ए मेरे फरिश्तो ठहरो, ये मेरी तरफ फिर पलट कर देख रहा है, इसकी उम्मीद बढ़ी हुई है। चुनांचे फिर रब की रहमत पुकारेगी, ए बंदे ये बता दे, आखिर तू ये बता कि आखिर तेरी आबादी से बाहर कोई ऐसा आलिमे दीन था जिसकी महफिल में तू बैठता था, कभी तू वहां पर जाकर शरीक हुआ, कभी उसकी महफिल में बैठा। बंदे से फरिश्ते पूछेंगे, वो बंदा अर्ज करेगा, ए मेरे मौला, मैं दुनिया के काम में इतना मसरूफ था, मैं इतना मशगूल हो गया था कि मुझे कभी फुर्सत ना मिली कि मैं किसी आलिमे दीन की बारगाह में बैठकर 2 लम्हा भी गुजार सकूं, 2 सात भी गुजार सकूं। रब की रहमत खामोश हो जाएगी, फिर फरिश्ते उसे आगे घसीट कर ले चलेंगे। अलकिस्ता मुख्तसर, बंदे से बार बार पूछा जाएगा, बंदा हर बार ना का जवाब देगा, रब की रहमत पुकारेगी, ए फरिश्तों एक काम करो, पूरी दुनिया का रजिस्टर जो अव्वल से लेकर आखिर तक, यानी अदम से लेकर आतम तक जो रजिस्टर रोजे कयामत तक बनेगा बना हुआ है, यानी इंसानों की एक फहरिस्त निकालो और उसमें देखो इसके नाम का कोई आलिम दीन गुजरा की नहीं, गुजरा की नहीं,
जब फरिश्ते उस रजिस्टर को पलटना शुरू करेंगे, हमारी तुम्हारी इतना तो देखना नहीं है कि दो चार दिन लग जाएगा, दो चार घंटा लग जाएगा। फरिश्तों ने खोला, रजिस्टर सामने आ गया, सारे नाम उनके सामने हैं, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। एक नाम आखिरकार आ गया जो कौमे बनी इसराइल में पाया जा रहा था, उसी नाम का एक बेहतरीन आलम रब्बानी गुजरा था। रब की रहमत से उन्होंने फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला ये जो आदमी है, इस नाम का एक आलिम आलम बनी इसराइल कौम में गुजरा है और बहुत पाबंदे शरा था, मुत्तकी था, परहेजगार था, उसके दिल में तेरा खौफ था, तेरी खशियत थी, तेरी बंदगी करता था, तुझे अपना खुदा मानता था, तेरे सामने सर झुकाता था। रब कदीर इरशाद फरमाएगा, रब की रहमत मचल जाएगी। अरे दुनिया वालों, आलिमों की अजमत समझो, आलिमों का मर्तबा समझो, आलिमों का वकार समझो। आज भी वक्त है इनके दामन से लिपटकर और अपने गुनाहों की माफी मांगो और इनसे इनके शान में की गुस्ताखियों की इनसे माफी मांगो। इसलिए क्योंकि अगर ये आलिम तुमसे नाराज हो जाएगा तो रब की रहमत तुमसे नाराज हो जाएगी, खुदा की रहमत तुमसे नाराज हो जाएगी। फरिश्ते ने कहा, मौला एक आलिम मिल गया है जो कौमे बनी इसराइल से ताल्लुक रखता है। रब की रहमत ने पुकारा, काहे फरिश्तो ठहरो, मैं उस आलिम के नाम पे इसके नाम को रखने की बरकत से मैं इसे माफ करता हूँ, बिना हिसाबों किताब इसे जन्नत में डाल दो। जरा सोचिए, एक आलिम के नाम पे नाम रख लो तो अल्लाह माफ कर दे, और कोई एहतराम कर ले तो क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह करम में दुआ, हमें और आपको सबको उलमा के एहतराम की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया, कहने सुनने में कोई गलती हो, मौला माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।
सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे हजरत मौलाना आबिद रज़ा हशमती, जिनसे आप उलमा की फजीलत पर तकरीर समाअत फरमा रहे थे। हकीकत यही है कि आलिम दीन की बहुत बड़ी फजीलत हदीस पाक में है, कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है और हदीस पाक में तो बाकायदा उसका बाब ही है उलमा की फजीलत का। वो लोग जो उलमा का अदब व एहतराम करते हैं, और उलमा से मुराद वो उलमा जो उलमाए हक हैं। उलमा तो बहुत हैं, उलमा यहूद में भी हुए, उलमा नसारा में भी हुए, उलमा मुनाफिकीन में भी हुए और होते आ रहे हैं, आज भी उलमा हैं। वहाबियों में भी उलमा कहलाने वाले हैं, और देवबंदियों में भी हैं, गैर मुकल्लिदों में भी हैं, राफजियों में भी हैं, कादियानियों में भी हैं। मगर यहाँ उलमा से मुराद क्या है? उलमाए हक, यानी इस जमाने में जिसकी पहचान मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत पर सख्ती से अमल करने वाला जो आलिम है, हकीकत में वही आलिम रब्बानी, वही आलिम हक है। और मसलके आला हजरत के खिलाफ जो चला गया, वो राह रात से कट गया और राह रात से भाग गया। और इस जमाने में हक की पहचान मसलके आला हजरत है, अहले हक की पहचान मसलके आला हजरत है।